Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahimna Stotra, presented by Swami Sri Muktanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Namo Brahmadibhyo. ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दिक्कालाद्यनवचिन्न चिन्नमात्रमूर्तये स्वानुभूतेकाय नमः शांताय तेजसे। ओम शांति शांति शांति। आइए भगवान शिव का स्मरण करते हैं। जब जब भी संसार पर विपत्ति आती है तो सभी लोग उन्हीं को ही याद करते हैं। वे ही संपूर्ण संसार के रक्षक हैं, पालक हैं और अंत में संपूर्ण संसार को अपने अंदर लीन करने वाले हैं। बड़ा दुर्विज्ञेय है यह शिव तत्व। यह आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, सत्स्वरूप है। इस तत्व को हम गुरुमुख से वेदों के माध्यम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में अपने स्वरूप में अनुभव करने के लिए बहुत लंबी यात्रा है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, साधकों ने ज्ञान भक्ति और वैराग्य के द्वारा इस परम तत्व को प्राप्त किया। कर्णप नयनार जैसे भक्त सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं, वहीं उपमन्यु और दधीचि ऋषि जैसे को तप करना पड़ता है। क्या विलक्षण है, लेकिन एक सालों के सामिप्य सायुज्यता को प्राप्त करते हैं तो एक तत्स्वरूपता को प्राप्त होते हैं, जिसके लिए कृष्ण भगवान ने कहा ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। ज्ञानी तो मानो मेरी ही आत्मा ही है। भगवान राम भगवान शिव के लिए कहते हैं, बड़ा प्यारा कहा उन्होंने, नमामि वेदत्रय लोचनम तम, नमामि मूर्ति त्रयवर्जितम तम, नमामि पुण्यम सदसद्व्यतीतम, नमामि तम पापहरम नमामि। हम कहते हैं त्रिलोचनाय, भगवान के कितने नेत्र हैं? तीन नेत्र हैं। अब ये तीन नेत्र क्या हैं? तो श्रीराम कहते हैं कि नमामि वेद त्रयलोचनम तम, मैं उनको नमस्कार करता हूं जिनके वेद तीन नेत्र हैं। अर्थात जिनका ज्ञान हमें वेद से प्राप्त होता है और वेद जिनसे प्रकट हुए हैं। हमारे एक न्याय के बहुत बड़े आचार्य हुए, उन्होंने ग्रंथ लिखते समय लिखा, विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे, उनके दिव्य चक्षु हैं, लेकिन कौन से हो दिव्य चक्षु? त्रिवेद, वेदत्रयी। भगवान राम भी कह रहे नमामि वेद त्रैलोचनम तम, जिनके वेद तीन नेत्र हैं, जो भूत भविष्य और वर्तमान हमारे चतुर्सिद्ध जी ये कल गए, बड़े अच्छा लगा इन्होंका। हम जब बात कर रहे थे सर्वज्ञता की तो ये कहने लगे स्वामी जी जो सर्वज्ञता है ईश्वर में वो तो माया विशिष्ट में ही आएगी ना। हमने कहा ये तो आपने बहुत सुंदर बात पकड़ी, क्योंकि माया रहित जो ब्रह्म है, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है, उसमें काल नहीं है, उसमें केवल बोध स्वरूपता है। उसमें काल है ही नहीं, उसमें केवल बोध स्वरूपता है। ये जो सर्वज्ञता है ये तो माया विशिष्ट ब्रह्म का ही स्वरूप है, क्योंकि सर्वज्ञता का मतलब होता है कि जो कुछ संसार में उन सबको जाने, भूत भविष्य वर्तमान को जाने, प्रत्येक पदार्थ और घटनाओं को जानते हों, जीवों के कर्म संस्कारों को जानते हों, और कौन से जीव को क्या गति देनी है इसका भी ज्ञान हो। ये सर्वज्ञता माया, जितना भी कार्य माया के कारण है, आना जाना माया के कारण है, लेकिन व्यवस्था करना परमात्मा के काम है। तो ये सर्वज्ञता माया विशिष्ट ब्रह्म का ही लक्षण है, और जो बोध है अनंत बोध है, बोध स्वरूपता उनका अपना स्वरूप है। तो ये जो वेद त्रय है, तीनों वेदों के द्वारा जो भूत भविष्य और वर्तमान को जो जानते हैं, ये ईश्वर का लक्षण है। अश्वा निश्वसितस्य, ये जो महान ब्रह्म इसी के श्वास मात्र ये वेद हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद जितने भी हैं, इनके श्वास से प्रकट हुए हैं। श्वास से प्रकट होने का अर्थ ये नहीं कि उन्होंने श्वास लिया और प्रकट हो गए, उसका अर्थ है कि जैसे हम श्वास को बिना प्रयत्न के लेते हैं, ऐसे ही इन्होंने अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम् ब्रह्म सनातनम ददोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजुषाम लक्षणम। महामनु महाराज ने लिखा है कि अग्नि वायु रवि और अथर्व, इन चार ऋषियों के अंतःकरण में उन्होंने वेद ज्ञान को प्रकट किया, और वहां से फिर श्रुत परंपरा चलती हुई चली आई। ये मनु महाराज कहते हैं। आदित्य ऋषि, अग्नि ऋषि, वायु ऋषि और अथर्व ऋषि, अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम् ब्रह्म सनातनम। तो ये सारा का सारा संसार बनाया, और संसार बना करके हमारे प्रयोग के लिए जिन्होंने ज्ञान प्रकट किया, और जिनको जानने के लिए समझने के लिए हमें उन्हीं वेदों का आश्रय लेना होता है। जन्माद्यस्यतः, ये तो ठीक है, लेकिन पता कैसे चले? शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र के द्वारा ही हमें उस ब्रह्म का पता चलता है। तो वेद त्रयलोचनम तम, ऐसे जो तीन वेद जिनके नेत्र हैं, हठ योग में जब ध्यान की विधि बताई जाती तो कहा जाता है भ्रुकुटी के मध्य पर ध्यान को लगाओ। महर्षि पतंजलि ने कहा धारणा के विषय में, देश बंधस चित्तस्य धारणा, शरीर के किसी देश विशेष में स्थान विशेष में चित्त को लगाने का नाम धारणा है। महर्षि व्यास ने भाष्य करते समय पतंजलि योग दर्शन के उन्होंने दो तीन स्थान बताए हैं, भोजवृत्ति में भी बताए हैं। तो एक तो भ्रकुटी का मध्य भाग है, एक नासाग का अग्रभाग है, नासाग्रम संप्रेक्षतम, और नासाग्र है कंठ है, एक हृदय है। कुछ चार स्थान मुख्य रूप से बताए, वैसे पूरे शरीर में कहीं भी आप ध्यान लगा सकते हैं। तो नासाग्र भाग को भगवान शंकराचार्य ने कहा, यह नासाग्र भाग का अर्थ है ज्ञानमयी दृष्टि, ज्ञानमयी दृष्टि। और ये ज्ञानमयी दृष्टि है, हठ योग के आचार्य ये कहते हैं कि जो भ्रकुटी के ऊपर आप ध्यान लगाएंगे तो प्रकाश होगा, वह प्रकाश ही आपका तृतीय नेत्र है, वह ज्ञान ही आपका तृतीय नेत्र है। तो ये जो ज्ञान, ये जो तीसरा नेत्र है, लेकिन हमारे भगवान राम कहते कि नहीं नहीं तीनों ही नेत्र ज्ञान है, तीनों ही नेत्र ज्ञान है, वो है वेदत्रयी। ये तीनों ही ज्ञान है, ज्ञान ही है तीनों नेत्र। नमामि वेदत्रयलोचनम तम, नमामि मूर्ति त्रयवर्जितम तम। और जो परम शिव है, परम शिव, ये परम शिव ब्रह्मा विष्णु महेश से परे है, रुद्र से। भगवान शिव के बाएं बाएं भाग से विष्णु प्रकट हुए और भगवान शिव के दाहिने भाग से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनके हृदय से रुद्र प्रकट हुए। हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी रुद्र उसी एक परात्पर शिव से प्रकट हुए हैं। उसको परम शिव कहते हैं, उसको परम रुद्र कहते हैं, लेकिन ये जितने भी हैं सारे के सारे उन्हीं से ही प्रकट हुए हैं। जो इन सबसे ऊपर है, इन सबसे परे है, ऐसे जो शिव हैं, नमामि पुण्यम सदसदा व्यतीतम, जो शुभ हैं, विशुद्ध देहाय। विशुद्ध देह का मतलब है कि देह तो हम समझने के लिए कह रहे हैं, देह का अर्थ यहां स्वरूप से है, उनका स्वरूप विशुद्ध है, और विशुद्ध का अर्थ है मायातीत, त्रिगुणम रहितम, त्रिगुण रहितम, तीनों गुणों से परे। ये जो दोष है ये माया में है, विकार है माया में है। तो माया मलिनता से रहित, माया से रहित, और सदसद व्यतीतम, व्यक्त और अव्यक्त जगत जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है इससे परे है वो, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उससे वो परे है। नमामि तम पापहरम नमामि, और संपूर्ण पापों को हर करने वाले हैं, हरण करने वाले हैं, इसलिए उनका एक नाम है हर। क्या है हर? जब गंगा जी चलती है ना हिमालय से तो एक ही आवाज करती चलती, हर 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 है। गंगा जी जब चलती हिमालय से तो हिमालय से चलती हुई एक ही नाम का जप करती हुई समुद्र में पहुंचती, हर 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 हर। नहीं देखो कभी बैठ करके आवाज सुनो, एक ही मंत्र का जप करती है गंगा जी, और वही मंत्र का जप करते करते सागर में मिल जाती है। तो ये पाप हर है, और गोस्वामी जी ने उसी बात को कहा, देखो हम तो रुद्राष्टकम की बात कर रहे हैं, ऐसे भगवान राम, देखो हमारे यहां ऐसा है कि एक वैष्णव एक है शैव, है ना, शैव के यहां सबसे बड़े भक्त शिव के विष्णु हैं। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को कहां से मिला? शिवजी से ही मिला है ना सुदर्शन चक्र। अच्छा दूसरी बात, महाभारत का युद्ध हो रहा है, अर्जुन युद्ध के मैदान में है, अर्जुन युद्ध के मैदान में है और श्री कृष्ण उनकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन को निर्भयता क्यों है? पशुपति अस्त्र से, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था यदि आपको विजय प्राप्त करनी हो तो शिव की आराधना करो। किसकी आराधना करो? और शिव की आराधना करने के लिए अर्जुन गए गए अर्जुन शिव की आराधना करने के लिए। महाराज बड़ा तप किया, अर्जुन बड़े तपस्वी थे। महाभारत अगर आप पढ़ें महाभारत, तो महाभारत में अर्जुन का सारा जीवन तपस्या में ही गया है। महाभारत अगर पढ़ें तो पशुपत अस्त्र के लिए तप किया, हिमालय में जाकर के तप किया, कहां कहां तप नहीं किया उन्होंने, कहां कहां नहीं किया। पूरे महाभारत में अर्जुन का जीवन एकदम धवल है, धवल श्वेत है, कहीं पर भी कोई निशान लग नहीं सकता किसी तरह का, इतना तपोमय जीवन है उनका। तप किया और भगवान शंकर ने परीक्षा ली किरात का रूप धारण करके। तो यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन की सहायता कर रहे हैं, तो भी श्री कृष्ण के पास और अर्जुन के पास एक ही बल है कि ये भीष्म पितामह है, चाहे कितने भी दिव्य अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग कर लें, लेकिन पशुपतास्त्र के सामने एक भी टिकने वाले नहीं है, एक भी टिकने वाला नहीं है। तो ये जो भगवान है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि जाओ शिव की आराधना करो। श्री कृष्ण ने स्वयं उपमन्यु से मंत्र दीक्षा लेकर के 12 वर्ष तक भगवान शिव की आराधना की, 12 वर्ष तक। ये मैं नहीं कह रहा, महाभारत कह रहा है। आप तो पढ़ते हैं ना महाभारत, हाँ। और वहां पर 1008 नाम भगवान श्री कृष्ण ने शिव के उच्चारण किए हैं, 1008 नाम। और भगवान राम ने क्या किया? अब भाई युद्ध है, युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, तो विजय प्राप्त करनी है तो शक्ति चाहिए ना, कहां से आएगी? विजेतव्यालंका चरण तरणीयो जल निधिर विपक्षे पौलस्त्य रणभुवि सहायाश्च कपय। लंका पर विजय प्राप्त करनी है, सामने समुद्र है और युद्ध करने वाले रावण है। रावण रावयति, जो रुला दे। अरे जब रावण निकलता था तो दूर से गांव के लोग चिल्लाते थे, रावण आ गया, रावण आ गया, रावण आ गया, रावण आ गया, इसलिए उसका नाम रावण था। रावयति, सबको हल्ला मचा देता था जिधर से निकलता था, इतना दुष्ट था, इतनी उसके अंदर मलिनता थी। तो सामने पौलस्त्य है, रावण है, युद्ध के मैदान में कपी हैं। तो भगवान ने विचार किया, जिसकी शक्ति को लेकर के रावण इतना अभिमान में चूर है, उसी से हम भी शक्ति ले लेते हैं। रावण के पास शक्ति कहां से आई? रावण कहता है, चंद्रचूड़ चरणे चरणे च छिन्ना पिमस्त गणा मम मंगलाय। चंद्रचूड़ के चरण में और रण में, युद्ध के मैदान में अगर मेरे सिर कट जाते तो मेरा मंगल ही होता है। चंद्रचूड़ चरणे चरणे च छिन्नापि मस्तक गणा मम मंगलाय। रावण में इतना शक्ति भगवान शिव की आराधना करने से हुई, तो वो तो तमोगुण में आ गया, जीवन व्यर्थ हो गया, बर्बाद हो गया उसका तो। और भगवान, देखो एक भगवान की विशेषता, भगवान आप भागवत तो आप बहुत सुनते, मैं भागवत का उदाहरण इसलिए देता हूं कि देवता मिलकर के गए, महाराज वो असुर हमें बहुत तंग कर रहा है। भगवान ने कहा, भाई अभी उसके कर्म शेष हैं, थोड़ा और रुक जाओ, अभी जो उसका पुण्य कर्म है वह बाकी है। तो भगवान तो तप का फल देते हैं, तप का, उस तप का उपयोग कौन क्या करता है ये अलग बात है। शक्ति मेरे पास है तो शक्ति के दोनों प्रयोग हैं, दानाय रक्षणाय, चाहे हम दान करें ज्ञान धन का, शक्ति से रक्षा करें और ज्ञान से किसी को जीवन दें। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय च। साधु में और असज्जन में और दुष्ट में यही अंतर है, एक के पास शक्ति आती तो संहार करते, एक पास शक्ति आती तो रक्षा करते हैं। यही तो अंतर है। रावण के पास शक्ति आई संहार किया, और राम के पास शक्ति आई तो आप देखिए वाल्मीकि रामायण में राम का बड़ा उदात्त चरित्र है, बहुत उदात्त चरित्र है। राम इतने सौम्य हैं, इतने सौम्य है, सौम्यता होना मुश्किल है। कोई उनको कुछ भी कह जाए वो कुछ जवाब नहीं देते। हमारी क्या स्थिति, हम कहेंगे महाराज 7:56 हो गए, दूसरा कहेगा नहीं 7:57 हो गए। अब एक मिनट के पीछे बहस करेंगे, नहीं 56 ही हुए, आपकी घड़ी एक मिनट आगे, वो कहेगा नहीं आपकी है। बहस करने लग जाते ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहस करते करते 3 मिनट आगे और निकल जाते हैं, बहस खत्म नहीं होती। व्यर्थ में समय बर्बाद करना नहीं। लेकिन राम का जब चरित्र पढ़ते हैं तो उनको कोई कुछ कह जाए तो उस पर ध्यान नहीं देते, उस पर कोई ध्यान नहीं, दूसरे के दोषों के ऊपर उनका ध्यान जाता ही नहीं है। बड़ा बड़ा उदात्त चरित्र है, अपने से बड़ों का मान सम्मान करते हैं। राजकुमार रहते हुए भी जब बाजार से निकलते हैं तो गरीबों के पास, दुकानदारों के पास, काम करने वालों के पास खुद चले जाते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। बड़ा उदात्त चरित्र है रामायण में, बहुत उदात्त चरित्र है। फिर ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष के पास शक्ति नहीं होगी तो और कहां होगी। बस केवल अंतर इतना ही है, वो समय पर उपयोग लेते हैं, और दुष्ट आदमी हर बार बार उस शक्ति का दुरुपयोग करता रहता है, बार बार दुरुपयोग करता है। भगवान राम ने फिर क्या किया कि चलो शक्ति मांगते हैं भगवान शिव जी से। बाणासुर संग्राम हुआ, बाणासुर संग्राम हुआ तो भाई कहा कि बाणासुर को जब तुम्हारी ध्वजा गिर जाएगी तो लड़ने वाला कोई आ जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा मैं तो लड़ने जाऊंगा लेकिन आप उसका साथ दोगे? उन्होंने कहा साथ तो देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, लेकिन तुम ऐसा करना विजृंभास्त्र छोड़ देना, मैं जमाई लेके पड़ जाऊंगा, तुम इसको काम कर देना। लेकिन रावण का साथ नहीं दिया। देखिए शिवजी की तपस्या से रावण को ऐश्वर्य प्राप्त तो हुआ, शिवजी की तपस्या से रावण को शक्ति तो मिली, लेकिन राम और रावण का युद्ध हुआ तो शिवजी ने रावण का साथ गए ही नहीं। उधर कितना ही बड़ा भक्त हो, क्योंकि भक्त तब तक ही है जब भक्ति की सात्विकता उसके अंदर रहती है, और जब तामसिक और रजोगुणी आ जाती है फिर वह भक्त भक्त नहीं रहता, फिर तो वह अभक्त हो जाता है, अभक्त हो जाता है। रावण में जब तक सत्वगुण था, तप था, तब तक भगवान उनको प्यार करते थे, और जैसे ही उनमें रजोगुण आया भगवान ने उसको छोड़ दिया। मही पादाघाता व्रजति सहसा संशय पदम, छोड़ दिया तो फिर भगवान राम ने समुद्र के तट पर और भगवान शंकर को आवाहन किया। आज भी वहां द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है, क्या नाम उसका, रामेश्वरम। अब इसकी व्याख्या व्याख्याकार करते हैं, क्योंकि ऐसा होता ना कि जो शिवजी वाले हैं वो तो कहेंगे राम ईश्वर, दो शब्द है ना रामेश्वरम, रामस्य यह ईश्वर रामेश्वर, राम का जो ईश्वर है। दूसरे कहेंगे नहीं राम ईश्वर यस्य स, ये संस्कृत की विशेषताएं हैं। एक कहेगा नहीं रामश्च ईश्वरश्च रामेश्वर, कुछ भी आप अर्थ करो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस स्थान पर भगवान राम ने पूजा की है, जिस स्थान पर भगवान राम ने आवाहन किया है, तो पूजा जो पूजक होता है, पूजक होता है पूजा करने वाला, और जिसकी पूजा की जा रही है, तो जिसकी पूजा की जा रही है वही स्वामी होता है, और पूजक जो है, जिसकी जो पूजा कर रहा है वह उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ही पूजा कर रहा है। कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा की जा रही है, तो राम जी पूजा कर रहे हैं कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की, राम जी आज आराधना कर रहे हैं कि युद्ध के मैदान में मैं जाऊं तो मेरी पराजय ना हो, मैं विजय को प्राप्त करके आऊं। इसलिए उन्होंने वहां पर रामेश्वरम की स्थापना की। आज भी हमने एक दो मंदिर देखे, कई तो महात्माओं के नाम से ही मंदिर बन जाते हैं शिव जी के। महात्मा आराधना करते हैं, फिर उनके शिष्य उनके नाम से मंदिर बना देते हैं, तो मंदिर के ऊपर लिख देते हैं। मान लो जैसे मेरा नाम मुक्तानंद है तो मुक्तेश्वर महादेव लिख दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि भाई हाँ, ऐसे बहुत मंदिर हैं। अखंडेश्वर महादेव रख दिया मान लो किसी ने, ऐसे बहुत मंदिर हैं आज भी हैं? नहीं, बहुत हैं ऐसे आज भी नहीं। ओंकारेश्वर तो चलो द्वादश ज्योतिर्लिंग में है। तो इसका अर्थ यह होता है कि जो जिसकी आराधना कर रहा है वह अपने आराध्य को अपने से महान समझ करके ही कर रहा है। जो जिसकी आराधना कर रहा है वह अपने आराध्य को अपने से महान समझता तो ही तो आराधना कर रहा है। नहीं तो राम का आप जीवन पढ़ो, अर्जुन ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, महाभारत में है अर्जुन की बात। वो कहते हैं कि अर्जुन के पास दो चीज नहीं है, दो चीज अर्जुन के पास नहीं है, न दैन्यम न च पलायनम। एक तो दीनता अर्जुन के पास नहीं है और एक युद्ध से भागना अर्जुन के पास नहीं है। न दैन्यम न च पलायनम। और श्री कृष्ण कहते हैं राम शस्त्र भ्रतामहम। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? राम शस्त्र भ्रतामहम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं। तो आप सोचो राम का व्यक्तित्व क्या होगा। राम ने कभी भी, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, राम ने कभी भी दो बार धनुष नहीं उठाया, राम ने कभी भी दो बार तीर का अनुसंधान नहीं किया अपने जीवन में। जिस समय किसी को मारना होता था तो एक ही बार धनुष का अनुसंधान करते थे, दोबारा नहीं करते थे, एक ही बार में उसका काम तमाम कर देते थे। कितने भारी शस्त्र और अस्त्र के वो ज्ञाता थे, आप कल्पना करो। जब वो 16 वर्ष के भी नहीं थे, दशरथ ने कहा महाराज विश्वामित्र ये तो ऊन 16 वर्षम, 16 वर्ष से कम आयु के हैं, ये सुभाव और मारिज को कहां मारेंगे। वशिष्ठ ने कहा तुम नहीं जानते ये विश्वामित्र कौन है, इनके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। और बहुत विश्वामित्र की प्रशंसा की, भेज दिया राम को। रास्ते में जैसे ही सरयू के तट पर गए उन्होंने कहा राम आचमन करो, तुम्हें बला और अति बला की मैं शिक्षा देता हूं। विश्वामित्र ने वहीं बला और अति बला की दीक्षा दी, विद्या की, जिससे उनको भूख प्यास और बड़ी दिव्य शक्ति का संचार हुआ। वो 16 वर्ष की कम आयु में उन्होंने मारीच को तीर मारा, कहां गया, एक ही तीर में, दोबारा अनुसंधान नहीं किया। और आश्चर्य के बाद देखिए पूरा जीवन उनका बड़ा दिव्य है। मैं रास्ते में बहुत लंबी कथाएं, लेकिन ऐसा राम जिसने कभी दो बार अनुसंधान ना किया हो तीर का, जिसने किसी को वध करने के लिए दो बार धनुष नहीं उठाया हो, एक ही बार उठाया है, एक ही बार, इतना दिव्य, ओहो हो, बड़ा दिव्य शक्ति उनके अंदर, बड़ी गजब की शक्ति है।